फिर रेहान का लहजा अचानक बदल गया। वो थोड़ा नरम हुआ, उसके पास बैठ गया। मुझे तुम पर पूरा यकीन है सादिया, उसने धीमे से कहा। सादिया ने उसकी तरफ देखा, आंखों में उम्मीद के साथ। तुम ज्वेलरी क्यों चुराओगी? रेहान हल्का सा मुस्कुराया। मैं तुम्हें खुद कितनी ज्वेलरी गिफ्ट करता हूँ। सादिया के चेहरे पर हल्की सी राहत आ गई। उसे लगा जैसे कोई उसका साथ दे रहा है। लेकिन रेहान की आंखों में कुछ और ही चल रहा था जो सादिया समझ नहीं पाई। देखो, उसने धीरे से कहा, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। उसने ज्वेलरी की तरफ इशारा किया, इसलिए चाहता हूँ ये जो ज्वेलरी वाला मामला है इसे यहीं खत्म कर दो। सादिया चुप हो गई। उसके लिए ये सुकून था, लेकिन सच में यही वो जाल था जिसमें वो धीरे धीरे फंसती जा रही थी। अगली सुबह अभी भी इस बात की परेशानी थी कि नासिर खान से बात नहीं हो पाई थी। इस बात को लेकर घर के बड़े, फरीद खान, रेहाना बेगम, जुबेदा बेगम, ये तीनों बहुत परेशान थे, जबकि बच्चों का इस बात पर कोई ध्यान नहीं था। ना ही अरमान, ना ही बाकी, सब अपनी अपनी लाइफ में जी रहे थे। सुबह डाइनिंग टेबल पर फरीद खान तो बिना कुछ खाए पिए ही उठ गए थे। नासिर खान की उन्हें फिक्र हो रही थी। उनके जाते ही वहां पर रेहान और अरमान दोनों ही आकर बैठ गए थे। अरमान की तो पहले से आदत थी कि वो ब्रेकफास्ट वहीं करता था, अब तो उसे नूर से मिलने का बहाना मिल जाता था। मगर अरमान को देखते ही नूर का मूड खराब हो गया था। वो अभी भी उससे नाराज थी। मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना यामी, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है जल्दी, नूर ने कहा। करीम को तो आने दो, रेहाना बेगम ने कहा। उनका मतलब ड्राइवर करीम से था। मैं छोड़ाता हूँ, अरमान ने कहा। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं छोड़ाता हूँ, वैसे मुझे वक्त कम है, साथ ही अरमान ने जोड़ा। रेहान की नज़र सिर्फ अरमान के चेहरे पर थी। तुम आज अपने सारे काम खत्म करो, रेहान ने अरमान से कहा। नूर को मैं यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दूंगा। रेहान खड़ा हो गया था जाने के लिए। नहीं, कोई बात नहीं, ड्राइवर आ जाएगा, मैं उसी के साथ चली जाऊंगी, नूर ने कहा। कहीं ना कहीं रात की बात से वो परेशान थी। उसकी सिक्स सेंस उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। चलो, तुम लेट हो जाओगी, रेहान ने हर बात को इग्नोर किया और जाने लगा। आपका नाश्ता, अरमान ने कहा। तुम लोगों की लड़ाई से मेरा पेट भर जाता है, रेहान ने कहा। इसका मतलब साफ था, नूर और अरमान की लड़ाई। वो दिखा रहा था कि वो क्यों नूर को यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर रहा था। वो बहुत चालाक था, अपने अंदर की फीलिंग अभी किसी को नहीं दिखाना चाहता था। भाई, आपकी मीटिंग थी, अरमान ने कहा। रेहान ने अरमान को बिल्कुल इग्नोर किया और नूर की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है तो बातें सुननी है यहीं खड़े रहकर? नूर उसके पीछे जाने लगी थी। रेहान नूर को यूनिवर्सिटी लेकर नहीं गया था, बल्कि सीधे गाड़ी की एजेंसी लेकर आया था। बड़ी सी ग्लास बिल्डिंग, अंदर चमचमाती नई गाड़ियां, हर तरफ एक अलग ही दुनिया थी। नूर ने जैसे ही देखा, उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। यहाँ क्यों आए हैं हम, उसने धीमे से पूछा। बस थोड़ा ही टाइम लगेगा, रेहान ने सहजता से कहा, मुझे थोड़ा काम है। नूर चुपचाप गाड़ी से उतर गई। उसके कदम धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन उसका मन कहीं और ही था। असल में वो अभी भी अरमान की वजह से परेशान थी। उसके शब्द, उसका लहजा, उसका गुस्सा, सब उसके दिमाग में घूम रहा था। वो उसे रोक भी रहा था, उस पर हक भी जता रहा था और फिर छोड़ने की बात भी कर रहा था। नूर खुद समझ नहीं पा रही थी कि उसे बुरा क्यों लग रहा था। वो एजेंसी के अंदर बनी बैठने की जगह पर जाकर बैठ गई, हाथ आपस में उलझे हुए, चेहरा थोड़ा उदास, आंखें कहीं खोई हुई। उसी वक्त रेहान वापस आया। उसने एक नज़र नूर पर डाली। तुम परेशान क्यों हो, उसने सीधे पूछा। नूर हल्का सा चौंकी, फिर तुरंत नजरें चुरा ली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, रेहान ने कुछ सेकंड उसे देखा जैसे उसके चेहरे से सच पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने बात बदल दी। अच्छा, ये देखो, तुम्हें अपनी गाड़ी पसंद है, नूर ने उसकी तरफ देखा। समझ नहीं पाई, मेरी गाड़ी, रेहान हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, तुम्हारे लिए गाड़ी ले रहा हूँ, नूर एकदम से चुप हो गई। उसे जैसे यकीन ही नहीं हुआ। देखो, इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, रेहान ने आराम से कहा। अब मुझे तुम्हारी टेंशन नहीं रहेगी। अरे नहीं, नूर तुरंत बोली, मगर मैं तो करीम भाई के साथ आती जाती हूँ, उसकी आवाज में साफ उलझन थी। गाड़ी तो अभी भी करीम ही चलाएगा, रेहान ने समझाते हुए कहा। मगर तुम इस गाड़ी से आओगी जाओगी, उस पुरानी गाड़ी से नहीं, फिर उसने थोड़ा झुककर धीरे से कहा। मुझे पता है करीम के पास जो गाड़ी है उसमें ना एसी सही है, ना साउंड सिस्टम, कितनी पुरानी है, कितनी अनकंफर्टेबल, मैं जानता हूँ। नूर ने उसकी बात सुनी, मगर उसके चेहरे पर खुशी नहीं आई, उल्टा उसे अजीब सा महसूस हुआ। उसकी सिक्स सेंस जैसे अंदर से जोर जोर से मना कर रही थी। देखिए, अनकंफर्टेबल होना क्या होता है, नूर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मुझे तो बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना होता है। आप तो बैन लगवा दीजिए, मैं तो बैन से भी चली जाऊंगी। उसकी बात बिल्कुल सच्ची थी। उसे लग्जरी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे तो बस अरमान के साथ आना जाना अच्छा लगता था।
क्योंकि अब वो उसे पसंद करने लगी थी। रेहान ने उसकी बात ध्यान से सुनी और इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। ये मैं नहीं चाहता, उसने धीरे लेकिन ठोस आवाज में कहा। क्या मतलब, नूर ने पूछा। रेहान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं नहीं चाहता कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तुम अपने स्टैंडर्ड भूल जाओ। नूर एक पल के लिए चुप रह गई। उसे ये बात अजीब लगी, थोड़ा चुभी भी। कहीं ना कहीं ये बात डबल मीनिंग थी, जैसे रेहान सीधे सीधे ये कह रहा हो कि अरमान उसके स्टैंडर्ड का नहीं है और उसका असली स्टैंडर्ड रेहान खुद है। लेकिन वो ये बात खुलकर नहीं कह सकता था, इसलिए शब्दों में छुपा गया। नूर ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरा स्टैंडर्ड तो यही है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पुरानी गाड़ी में करीम भाई के साथ जाने में। उसने साफ साफ अपनी बात रख दी। रेहान ने गहरी सांस ली। पहले की बात और थी, मगर अब नहीं। क्यों, अब क्या हुआ? नूर सच में समझ नहीं पा रही थी। रेहान कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अब तुम्हारा मुझ पर थोड़ा ज्यादा हक है। नूर की आंखें फैल गईं, जैसे अरमान और बाकी सबका मुझ पर हक है, वैसे ही तुम्हारा भी। तभी ड्राइवर आ गया। रेहान ने बिना कुछ और बोले गाड़ी की चाबी ड्राइवर को पकड़ा दी। अब से ये गाड़ी तुम चलाओगी, नूर मैडम इसी से आएंगी जाएंगी। ड्राइवर ने सिर हिला दिया। नूर बस खड़ी रही, उसने हल्का सा हाँ कह दिया, मगर दूसरे ही पल उसने सोचा कि वो अरमान माहिरा मुझे उनके बराबर रख रहा है, मुझे फिक्र नहीं करनी चाहिए। उसने एक पल में इस बात को दिमाग से निकाल दिया। वो ड्राइवर के साथ वहां से चली गई। रेहान उसे छोड़ने नहीं गया था, इसीलिए उसे उसने अपने दिमाग से सारे शख्स निकाल दिए जो उसके दिमाग में आए थे। रेहान गाड़ी की एजेंसी से बाहर निकला और अपनी कार में आकर बैठ गया। उसने गहरी सांस ली, जैसे खुद को थोड़ा संभाल रहा हो। उसने अपना फोन पहले से ही ऑफ कर रखा था। वो नहीं चाहता था कि जब नूर उसके साथ हो कोई उसे डिस्टर्ब करे। जैसे ही उसने फोन ऑन किया, स्क्रीन लगातार ब्लिंक करने लगी। डैड का नाम बार बार फ्लैश हो रहा था, फरीद खान। रेहान की भौहें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत कॉल रिसीव की। जी डैड, उधर से फरीद खान की घबराई हुई आवाज आई, रेहान तुम जल्दी से घर पहुंचो। रेहान सीधा होकर बैठ गया। क्या हुआ, तुम बस आ जाओ, आकर बात करते हैं। और बिना कुछ और कहे फरीद खान ने फोन काट दिया। रेहान कुछ सेकंड तक फोन को देखता रह गया। दिल में अजीब सा डर उतर आया था। ऐसा क्या हो गया, उसने खुद से बुदबुदाया। उसने बिना देर किए गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से घर की तरफ निकल गया। उधर घर में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हर तरफ सन्नाटा था, जैसे किसी ने अचानक खुशियों की आवाज बंद कर दी हो। रेहाना बेगम सोफे पर बैठी थी, उनके हाथ कांप रहे थे। जुबेदा बेगम की आंखों में आंसू थे और फरीद खान खामोश खड़े थे। दरवाजा खुला,
रेहान तेज कदमों से अंदर आया। क्या हुआ, उसकी आवाज में बेचैनी साफ थी। फरीद खान ने उसकी तरफ देखा, कुछ पल चुप रहे, जैसे शब्द ही साथ नहीं दे रहे हों। फिर उन्होंने धीमे लेकिन भारी लहजे में कहा, नासिर। रेहान का दिल जोर से धड़का। क्या हुआ नासिर खान को? फरीद खान ने आंखें बंद कर लीं और अगला वाकया जैसे पूरे घर पर गिर पड़ा। नासिर नहीं रहा। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। क्या? रेहान की आवाज बहुत धीमी हो गई। वो अपने फ्लैट में मिला है, फरीद खान बोले, मरा हुआ। रेहान के हाथ ढीले पड़ गए। कैसे? जिस दिन वो यहां से गया था उसी रात, फरीद खान की आवाज भर्रा गई, उसे हार्ट अटैक आया था। घर में सन्नाटा और गहरा हो गया।